ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। काठमांडू घाटी में नदी किनारे से अतिरिक्त 20 मीटर तक संरचना न बनाए जा सकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार जल्द ही पुनरावलोकन में जाएगी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि हासिल करके भी जन अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं किए जा सके विषय को दलों को गंभीर रूप में लेना चाहिए, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का कथन। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभा से हुआ पारित। और नाइजीरिया में तेल से भरे टैंकर के लोगों से भरे ट्रक से टकराने से 50 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सत्तारूढ़ दलों के बीच सरकार और संसद के समग्र कामों को और अधिक प्रभावकारी, संतुलित और व्यवस्थित करने की सहमति हुई है। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में सत्तारूढ़ दलों के शीर्ष नेताओं की आज हुई बैठक में सरकार के समग्र कामों को लेकर सत्ता पक्ष किस प्रकार एकीकृत रूप में प्रस्तुत हो, इस विषय में विचार विमर्श हुआ था। ये जानकारी नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक श्याम कुमार घिमिरे ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक ने कांग्रेस और नेकपा एमाले के बीच हुई 7 सूत्रीय सहमति के आधार पर सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने की सहमति भी की है। बैठक में संविधान संशोधन के विषय में राष्ट्र की आवश्यकता के आधार पर सबकी स्वीकार्यता को बढ़ाने के हिसाब से विचार विमर्श शुरू करने लगायत विषयों में भी विमर्श हुआ था। बैठक में प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अशोक कुमार राय, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महंत ठाकुर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी की अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ लगायत नेतागण सहभागी थे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि काठमांडू घाटी में नदी किनारे से अतिरिक्त 20 मीटर तक संरचना न बनाया जा सकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार जल्द ही पुनरावलोकन में जाएगी। उपत्यका सड़क विस्तार पीड़ित संघर्ष समिति और नदी मापदंड सरोकार समूह के संयोजक सुमन सैमी सहित की टोली का ज्ञापन पत्र लेते हुए प्रधानमंत्री ओली ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता और सरोकार समूह के मुद्दों को संबोधित करने के लिए सरकार तत्पर रहेगी। बता दें कि पिछले साल यानी विक्रम संवत 2080 पूछ 3 गते को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आनंद मोहन भट्टाराय और विनोद शर्मा की पीठ ने नदी क्षेत्र संरक्षण के लिए बागमती विष्णुमती लगायत घाटी की नदियों से 40 मीटर जमीन छोड़कर ही संरचना निर्माण की अनुमति देने का आदेश दिया था। इससे पूर्व विक्रम संवत 2065 में मंत्रिपरिषद ने बागमती विष्णुमती लगायत बड़ी नदियों से 20 मीटर क्षेत्र छोड़ने का निर्णय किया था। प्रतिनिधि सभा ने नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2081 को आज पारित किया है। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराय ने विधेयक को पारित करने के लिए सभा में प्रस्ताव रखा था। विधेयक पर विचार विमर्श के दौरान उठे सवालों के जवाब देते हुए मंत्री भट्टराय ने कहा कि सूचना प्रविधि के विस्तार के साथ ही नए नए विषय आ रहे मौजूदा समय में मौलिक विषयों का संरक्षण करना जरूरी है। उन्होंने साफ किया कि अंतर्विधात्मक अवधारणा की विधा में स्तरीय उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए घाटी के बाहर विश्वविद्यालय और केंद्रीय कार्यालय रखने के हिसाब से विधेयक लाया गया है। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों की बस्तियों को स्थानांतरित करने, जोखिम न्यूनीकरण के लिए समय पर ही ध्यान देने लगाए समसामयिक मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवनियुक्त प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल को नेपाली सेना के प्रधान सेनापति पद का ओहदा चिन्ह प्रदान किया। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति पौडेल ने उन्हें ओहदा चिन्ह प्रदान किया। बता दें कि सिग्देल को राष्ट्रपति पौडेल ने इसी भाद्र 12 गते को प्रधान सेनापति पद पर आज से लागू होने के हिसाब से नियुक्त किया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धियां हासिल करने के बावजूद हम अभी भी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आदर्श राजनीति में गिरावट का कारण है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज बीपी ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि सत्ता लोगों की सेवा करने का एक राजनीतिक साधन है। राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि बीपी ने सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश और लोगों के लाभ के लिए सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा में कभी कमी नहीं की। उन्होंने स्पष्ट किया कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को मजबूत करते हुए देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए बीपी द्वारा आगे बढ़ाए गए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, सिद्धांत, मूल्य मान्यता और उच्च नैतिक आदर्श राजनीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि हासिल करके भी जन अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं किए जा सके विषय को दलों को गंभीर रूप में लेना चाहिए। कार्यक्रम में जननायक बीपी कोयराला स्मृति ट्रस्ट बीपी ट्रस्ट द्वारा अपना जीवन साहित्यिक साधना के लिए समर्पित करने वाले साहित्यकार द्वारिका श्रेष्ठ को 1,00,000 रूपये और बीपी के आदर्शों, मूल्यों और मान्यता के लिए समर्पित प्रजातंत्र सेनानी भोजराज भंडारी को 51,000 की राशि का पुरस्कार प्रदान किया गया। बीपी कोयराला की 111वीं जन्म जयंती आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाई गई। नेपाल की राजनीति और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमंत्री कोयराला का 1971 भाद्र 24 गते जन्म हुआ था। बता दें कि राणा शासन का अंत करने के लिए विक्रम संवत 2003 साल में बीपी के नेतृत्व में नेपाली राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमंत्री बीपी कोयराला की 111वीं जन्म जयंती के अवसर पर आज बीपी संग्रहालय सुंदरी जल में आयोजित साहित्यिक महोत्सव का उद्घाटन करते हुए नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने बीपी के योगदानों को देशव्यापी रूप में प्रचार कर कांग्रेस को और अधिक सशक्त बनाने के अभियान में अग्रसर होने का पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को निर्देश किया। काठमांडू मुगलिंग सड़क खंड में आज दोपहर को आए भूस्खलन से सड़क अवरूद्ध हो गई है। काठमांडू मुगलिंग सड़क खंड अंतर्गत सुरंग मार्ग के आसपास आए भूस्खलन के कारण सड़क अवरूद्ध होने की जानकारी केंद्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी तान बहादुर कार्की ने दी। पुलिस के मुताबिक सड़क अवरूद्ध होने से बहुत से यात्री रास्ते में ही फंसे हुए हैं। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउवा ने कहा कि राजदूतों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने के दौरान भरसक समावेशी करने का प्रयास किया गया है। संसदीय सुनवाई समिति की आज की बैठक में मंत्री डॉ देउवा ने कहा कि अगर फिर भी कुछ सवाल उठे हैं तो सुनवाई समिति के सुझाव और निर्देशों को सरकार सुनेगी और क्रियान्वित करेगी। बता दें कि बीते सावन 14 गते को सरकार ने विभिन्न 17 देशों के लिए राजदूतों के नामों की सिफारिश की थी। रेडियो नेपाल के नवनियुक्त कार्यकारी निदेशक अमर ध्वज लामा ने आज पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए नवनियुक्त कार्यकारी निदेशक लामा ने कहा कि वो रेडियो नेपाल के प्रसारण को अधिक समावेशी और व्यावसायिक बनाने के लिए काम करेंगे। कार्यकारी निदेशक लामा ने कहा कि प्रसारण सेवाओं के विकास एवं विस्तार के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने एकीकृत कार्ययोजना बनाकर आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता भी जताई। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सहज और उत्साहजनक वातावरण में काम कर सकें, इसके लिए प्रेरणामोन्मुख व्यवस्था की जरूरत है। कार्यकारी निदेशक लामा ने कहा कि प्रदेश प्रसारण केंद्रों को स्रोत साधन संपन्न बनाने के साथ ही महिला और विकलांग कर्मचारियों के लिए काम करने के सहज वातावरण का व्यवस्थापन किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नाइजीरिया में तेल से भरे टैंकर के लोगों से भरे ट्रक से टकराने से 50 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय आपातकालीन मैनेजमेंट एजेंसी ने कहा कि स्थानीय समयानुसार दुर्घटना रविवार को 12:30 बजे हुई है। तेल से भरे टैंकर के ट्रक से टकराने के बाद विस्फोट हो गया। इसमें लोगों के साथ पशु भी थे। इसका वीडियो भी सामने आया है और इसमें दिख रहा है कि दोनों वाहनों में इसके तुरंत बाद आग लग गई। बगल में पशुओं के शव बिखरे हुए हैं। आपातकालीन एजेंसी के प्रवक्ता हुसैन इब्राहिम के हवाले से बीबीसी ने बताया कि पिछले कुछ सालों में सबसे खराब एक्सीडेंट हुआ है। बता दें कि नाइजीरिया में सड़क खराब होने के कारण ऐसा आए दिन होता रहता है। इसराइल ने सीरिया के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना के अनुसार इसमें 16 लोगों की जान गई है। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना ने स्वास्थ्य अधिकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट में बताया कि 36 लोग घायल हुए हैं। इसमें 6 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इसराइली सेना ने कहा है कि वो विदेशी मीडिया की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। काठमांडू घाटी में नदी किनारे से अतिरिक्त 20 मीटर तक संरचना न बनाए जा सकने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सरकार जल्द ही पुनरावलोकन में जाएगी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि हासिल करके भी जन अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं किए जा सके विषय को दलों को गंभीर रूप में लेना चाहिए, राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल का कथन। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2081 प्रतिनिधि सभा से हुआ पारित। और नाइजीरिया में तेल से भरे टैंकर के लोगों से भरे ट्रक से टकराने से 50 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।